हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 243। हाँ दी, मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ। वहाँ सब लोगों को खबर लग गई होगी। आप जानती ही हैं, वो लालची लोग आपसे मिलने, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे बस ये पूछना था, आप क्या किसी से मिलना? अरुण सुनैना से पूछ ही रहा था कि सुनैना उसकी बातों का मतलब समझते हुए एकदम सीरियस होकर बोली, नहीं, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मेरी जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग चाहे जितनी कोशिश करें, जब तक मैं नहीं चाहूंगी वो लोग मुझ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बस तुम किसी को यहाँ का पता मत बताना। ज़रूर दी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मुझे पता है, और मैंने किसी को ये भी नहीं बताया कि मैं शादी के बाद आपसे मिला हूँ। इसलिए डोंट वरी, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मैं घर वापस जाकर देखता हूँ वहाँ का माहौल क्या है, बाद में आपको बता दूंगा, पर आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना। वैसे उन लोगों के रिएक्शन से मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जाओ, तुम्हारा घर वापस जाना भी ज़रूरी है। और अगली बार कॉलेज में ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ शामिल मत होना, और अगर किसी भी मुसीबत में हो तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ना? सुनैना ने अरुण को समझाया। हाँ दी, आपका नंबर है। मैंने इमरजेंसी के लिए स्वीटी का नंबर भी ले लिया, क्योंकि जीजू का नंबर मेरे पास नहीं है, अरुण ने थोड़ा खुश होते हुए सुनैना को बताया। हाँ ठीक है, सुनैना ने थोड़ी लापरवाही से कहा। ओके, बाय दी, अब मैं चलता हूँ, अरुण दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। इतना कहकर अरुण वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुनैना ने अपने आगे से नाश्ते की प्लेट हटा दी, क्योंकि उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। अरुण और स्वीटी के चले जाने के बाद सुनैना बहुत अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि आदित्य वहाँ पर नहीं था। वो कल रात के बाद उससे मिला भी नहीं था, और सुबह जाने से पहले उसे कुछ बताकर भी नहीं गया था। उसने एक मैसेज भी नहीं किया था। सुनैना बार बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रही थी। आदित्य, क्यों करते हो तुम ऐसा? क्या मज़ा आता है तुम्हें मुझे इस तरह परेशान करने में? अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखकर सुनैना ने सवाल किया। कमरे में वापस आकर सुनैना ने आदित्य का नंबर डायल किया और उम्मीद की कि आदित्य शायद उसका फ़ोन रिसीव कर ले, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। सुनैना एकदम उदास हो गई। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे की डोर बेल बजी। सुनैना एकदम खुश हो गई और जल्दी से भागते हुए नीचे हॉल में आ गई। सुनैना को लगा कि आदित्य वापस आ गया है, इसलिए नीचे पहले से मौजूद गीता से पहले ही भागकर वो दरवाजे के पास पहुंच गई। गीता को सुनैना का ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो रुक गई और सुनैना को ही दरवाज़ा खोलने दिया। जैसे ही सुनैना ने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि सामने एक लगभग 25-26 साल का अच्छा दिखने वाला, हैंडसम और अनजान आदमी खड़ा है, जिसे सुनैना ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी भले ही दिखने में हैंडसम और गुड लुकिंग था, लेकिन फिर भी सामने खड़े उस आदमी को देखकर सुनैना एकदम उदास हो गई, क्योंकि उसे सामने आदित्य के होने की उम्मीद थी। मिसेस सिंघानिया, सामने खड़े उस आदमी ने सुनैना से सवाल किया। व्हाट? सुनैना को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो कन्फ्यूजन से बोली, आप आदित्य की पत्नी है ना? प्लीज़ जल्दी बताइए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल से इस घर का पता मिला, वो आदमी थोड़ा परेशान होते हुए बोला। सुनैना ने पीछे मुड़कर थोड़ी दूर पर खड़ी गीता की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा कि शायद गीता इस आदमी को जानती होगी, लेकिन गीता के चेहरे पर भी उसी तरह का कन्फ्यूजन वाला एक्सप्रेशन देखकर सुनैना समझ गई कि गीता ने भी इस आदमी को आज पहली बार देखा है। सुनैना अपनी जगह से दो कदम पीछे हटते हुए बोली, है कौन आप और ये सब क्या बोल रहे हैं? किस बात के लिए समय नहीं है और आप आदित्य को कैसे जानते हैं? मैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन शायद आप अभी उसे अच्छे से नहीं जानती हैं। वो हमेशा से ही ऐसा है। चलिए आप मेरे साथ। उस आदमी ने सुनैना को अपने साथ आने के लिए कहा और दरवाजे से ही वापस जाने के लिए मुड़ गया। सुनैना को उसकी बातें समझ नहीं आई और ना ही वो उस इंसान को पहचानती थी, इसलिए वो बिल्कुल भी उसके साथ जाने के लिए आगे नहीं बढ़ी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, पता नहीं कौन हो तुम? और वैसे भी आदित्य के इतने सारे दुश्मन हैं, जरूर तुम उसका कुछ बुरा चाहते हो, इसीलिए यहाँ पर। सुनैना दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए सुनैना को दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया और एक कदम अंदर आते हुए बोला, रिलैक्स भाभी जी, असल में मैं आदित्य का दोस्त हूँ। मुझे लगा था अभी परिचय का समय नहीं है, लेकिन आपने मुझे पहली बार देखा है तो मैं आपका डर भी समझ सकता हूँ। इसलिए आपको मेरे साथ नहीं आना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद ही सिटी हॉस्पिटल जाकर चेक कर सकती हैं। सिटी हॉस्पिटल? व्हाट डू यू मीन? आदित्य ठीक तो है ना? उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? और ये बात आपने इतनी देर से क्यों नहीं बताई? कहाँ गया था वो? हॉस्पिटल का नाम सुनते ही सुनैना एकदम परेशान होते हुए बोली, इसीलिए मैं आपको अपने साथ आने के लिए बोल रहा था, लेकिन आपको मुझ पर विश्वास नहीं। मैं आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, हम दोनों कॉलेज में साथ थे। सामने खड़ा वो आदमी बोल ही रहा था कि सुनैना एकदम हैरानी से बोली, अनय, इसका मतलब आदित्य ने आपको मेरे बारे में बताया है, तो आप मेरे साथ चल भी सकती है ना? और आदित्य का एक्सीडेंट नहीं हुआ है? लेकिन पूरी बात बोलने से पहले वो रुक गया। लेकिन क्या क्या हुआ है? आदित्य हॉस्पिटल में क्यों है? सुनैना ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि जितना भी पता है वो आपको भी पता होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है उसने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। चलिए मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। अनय ने इस बार काफी ज्यादा अपनेपन से कहा, तो सुनैना को उसकी बात पर यकीन हो गया, क्योंकि आदित्य ने जितना भी सुनैना के बारे में बताया था वो सब उसकी अच्छी यादें थीं, और आदित्य हमेशा ही अनय को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए सुनैना को लगा कि वह उस पर विश्वास कर सकती है। सुनैना ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाया और गीता की तरफ देखते हुए बोली, गीता दी, मैं इनके साथ जा रही हूँ, अगर स्वीटी या कोई और घर आए तो आप बता देना या मेरे मोबाइल पर कॉल कर लेना। सुनैना की बात सुनकर गीता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सुनैना जल्दी से अनय के पीछे पीछे वहाँ से निकल गई। अनय अपनी कार से वहाँ आया था। सुनैना से पहले ही वो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। सुनैना के पैसेंजर सीट पर बैठते ही उसने कार स्टार्ट कर दी और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। 3-3 नैना ने अपनी मूवी का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए प्रोडक्शन हाउस और अक्षत के मैनेजर अजय के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाई और अजय के साथ समय पर स्टूडियो पहुंच गई। अजय को इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जानते थे और उसे नैना के साथ देखकर वो सारे लोग हैरान रह गए। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े एक्टर का असिस्टेंट एक नई लड़की के साथ वहाँ आया है। अजय ने सारे पेपर चेक किए और नैना को साइन करने के लिए बोल दिया। नैना ने भी उस पर विश्वास करते हुए सारे पेपर पर साइन कर दिए, क्योंकि अक्षत ने ही अजय को उसके साथ भेजा था। वो नहीं चाहता था कि नैना के साथ कुछ भी गलत हो या कोई भी उसे बेवकूफ बनाकर उसका फायदा उठाए।
मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद नैना को पता चला कि मूवी के शुरुआती कुछ सीन आउटडोर लोकेशन पर शूट होने हैं, इसलिए अगले हफ्ते ही उसे फिल्म की शूटिंग के लिए पूरे कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ शहर से बाहर जाना है। ये बात उसे पहले से पता नहीं थी, लेकिन नैना को इस बात से इतनी कोई समस्या नहीं हुई। वो जानती थी कि शूटिंग के लिए एक्टर को हमेशा ही इतना एडजस्ट करना पड़ता है। डायरेक्टर के असिस्टेंट ने नैना से कहा, मैम, आपके फ्लाइट टिकट हम मिस्टर अजय को हैंडओवर कर देंगे, कल तक आप अपना जरूरी सामान पैक करके 3 दिन बाद हमें एयरपोर्ट पर मिलिएगा, बाकी सारा इंतजाम प्रोडक्शन की तरफ से होगा। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन अभी 3 दिन हैं, तो मुझे स्क्रिप्ट मेल कर देना, मैं तब तक वो पढ़ लूंगी, नैना ने असिस्टेंट डायरेक्टर से कहा। उसने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर सारी बातें होने के बाद नैना अजय के साथ अक्षत के बंगले में वापस आ गई। क्रमशः